एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने जीव विज्ञान और विकास के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, और ये सिर्फ जीव विज्ञान की किताब नहीं है, ये हमें अपने आप को, अपने समाज को और शायद जीवन के मकसद को ही एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस की 1976 में आई बहुत प्रभावशाली और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब द सेल्फिश जीन की।
और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, लगभग आधी सदी हो गई लेकिन ये किताब आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है, उतनी ही बहस जगाती है, उतनी ही ज़रूरी। इसने कुछ ऐसे सवाल उठाए और कह सकते हैं ऐसे जवाब दिए जो आज भी हमें कई बार चौंका देते हैं। जैसे, क्या हम जो कुछ भी करते हैं, क्या वो सब हमारे जीन के इशारों पर होता है?
हाँ बिल्कुल।
क्या प्यार, दोस्ती, यहाँ तक कि कुर्बानी, ये सब सिर्फ जीन के स्वार्थ का नतीजा है?
यही सवाल, यही बेचैनी इस किताब को इतना खास बनाती है। ये हमें थोड़ा असहज करती है, सोचने पे मजबूर करती है। तो चलिए पहले इसके लेखक रिचर्ड डॉकिंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका नजरिया समझना इस किताब को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, रिचर्ड डॉकिंस एक ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और पशु व्यवहार के अध्ययन मतलब इथोलॉजी के विशेषज्ञ। और जब उन्होंने ये किताब लिखी थी वो उस वक्त जो नए नए नव डार्विनियन विचार आ रहे थे उनके शायद सबसे मुखर और प्रतिभाशाली पैरोकारों में से एक थे।
बिल्कुल, और उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों जैसे डब्ल्यू डी हैमिल्टन, जिन्होंने बताया कि रिश्तेदारी क्यों मायने रखती है,
हाँ हाँ,
जॉर्ज सी विलियम्स, जिन्होंने समझाया कि विकास प्रजाति के भले के लिए काम नहीं करता, और जॉन मेनार्ड स्मिथ, जिन्होंने गेम थियोरी को जीव विज्ञान में लागू किया। इनके जो जटिल विचार थे ना, उनको बड़ी खूबसूरती से और यादगार मिसालों और रूपकों के साथ आम लोगों तक पहुंचाया।
सही कहा। जैसे वो सर्वाइवल मशीन या मीम जैसे शब्द हैं, वो तो आज हमारी बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। ये डॉकिंस की ही देन है।
हाँ, तो वो सिर्फ विज्ञान को समझा नहीं रहे थे, वो असल में विज्ञान को कह सकते हैं गढ़ भी रहे थे। और उनकी लिखने की शैली इतनी जबरदस्त और तर्क इतने पहने थे कि उनके विचार सचमुच जंगल की आग की तरह फैले।
तो आखिर क्या था वो क्रांतिकारी विचार जो उन्होंने द सेल्फिश जीन में पेश किया? क्या है इस किताब का सार?
देखिए, किताब का दिल एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार में धड़कता है। वो ये कि विकास की कहानी में असली हीरो या कह लें मुख्य किरदार कोई प्रजाति नहीं है, कोई समूह नहीं है, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति या जीव भी नहीं है।
अच्छा, तो फिर कौन है?
असली किरदार है जीन, डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस अपनी नकल बनाता चला जाता है।
एक मिनट, मतलब हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है फिर? हमारी क्या जगह इस कहानी में?
डॉकिंस के मशहूर शब्दों में, हम सब महज उत्तरजीविता मशीनें हैं, सर्वाइवल मशीन्स हैं, या कह लीजिए रोबोट हैं, जिन्हें हमारे जीनों ने खुद को बचाने और फैलाने के लिए अरबों सालों के विकास के दौरान धीरे धीरे बनाया है।
सोचिए जरा, हम अपने जीन्स की सवारी हैं, उनका कवच। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। हमारी जो मानव केंद्रित सोच है उसको सीधी चुनौती है ये।
बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला दावा है कि जो व्यवहार हमें बहुत नेक लगता है पर उपकारी लगता है, जैसे माँ का बच्चे के लिए खतरा उठाना,
हाँ,
या किसी का अपने भाई बहन की मदद करना, वो भी असल में अगर आप जीन के स्तर पर देखें तो स्वार्थी हो सकता है।
लेकिन कैसे? मतलब माँ का प्यार स्वार्थी कैसे हो सकता है?
डॉकिंस का तर्क ये है कि माँ अपने बच्चे को इसलिए बचाती है क्योंकि उस बच्चे में माँ के आधे जीन मौजूद हैं। बच्चे को बचाकर माँ के जीन अपनी ही प्रतियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। तो व्यक्ति का जो परोपकार हमें दिख रहा है वो जीन के स्वार्थ का नतीजा हो सकता है।
अच्छा, यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्वार्थ का मतलब कोई भावना या इरादा नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, जीन सोचते नहीं हैं, ये सिर्फ एक रूपक है। स्वार्थ का मतलब यहाँ सिर्फ वो प्रक्रिया है जिससे जीन अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपनी नकल बनाते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है।
ठीक है, ये रूपक समझना जरूरी है। तो किताब इसी जीन केंद्रित नजरिए से जीवन की शुरुआत से लेकर जानवरों के व्यवहार और यहाँ तक कि इंसानी संस्कृति तक सब कुछ समझाने की कोशिश करती है।
हाँ बिल्कुल, किताब हमें ले जाती है जीवन की उत्पत्ति तक, कैसे पहले वो प्रतिकृतिकर्ता रिप्लिकेटर्स अणु बने होंगे जो अपनी नकल बना सकते थे, फिर उनमें जाहिर है होड़ मची होगी, जो ज्यादा स्थिर थे, ज्यादा तेजी से नकल बनाते थे और ज्यादा सटीक नकल बनाते थे, वो कामयाब हुए।
अच्छा,
यही आज के जीन के पूर्वज थे। और फिर धीरे धीरे इन जीनों ने अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना लिए। पहले कोशिकाएं बनी और फिर हम जैसे जटिल जीव बन गए।
और फिर ये जीन इन वाहनों को, मतलब हम जैसे जीवों को, नियंत्रित कैसे करते हैं? अध्याय 4, जीन मशीन, शायद इसी बारे में बात करता है।
हाँ, देखिए, जीन सीधे दुनिया से तो बात कर नहीं सकते, वो तो कोशिका के अंदर नाभिक में बंद हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन फिर शरीर बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं, और दिमाग फिर पर्यावरण में नेविगेट करता है, खाना ढूंढता है, खतरे से बचता है, साथी चुनता है, ये सब।
डॉकिंस इसकी तुलना एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से करते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे कोई कुशल प्रोग्रामर हो जो भविष्य की तमाम अनिश्चितताओं का अंदाजा लगाकर एक प्रोग्राम बना दे, जैसे हमारी सहज प्रवृत्तियां होती हैं या सीखने की क्षमता होती है। और वो प्रोग्राम फिर मशीन यानी दिमाग में लोड कर दिया जाता है ताकि वो बदलती परिस्थितियों में सही फैसले ले सके।
ये दिलचस्प है, लेकिन दुनिया में सिर्फ सहयोग तो है नहीं, टकराव भी बहुत है, जानवर आपस में लड़ते भी हैं। अध्याय 5 आक्रामकता के बारे में है और उसमें वो गेम थ्योरी का इस्तेमाल हुआ है।
बिल्कुल, यहाँ डॉकिंस जॉन मेनार्ड स्मिथ के एवोल्यूशनरली स्टेबल स्ट्रैटेजी ESS यानी विकासवादी स्थिर रणनीति के विचार का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझें कि किसी खेल में जीतने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है जब दूसरे खिलाड़ी भी अपनी रणनीति बदल सकते हैं।
हाँ,
तो ESS वो रणनीति है कि अगर ज्यादातर लोग उसे अपना लें तो फिर कोई अकेली नई रणनीति उसे हरा नहीं सकती, वो स्थिर हो जाती है।
जैसे वो हॉक डव यानी बाज कबूतर वाला मॉडल।
हाँ, उसी से वो दिखाते हैं कि क्यों जानवरों की लड़ाइयां अक्सर सिर्फ दिखावटी या सांकेतिक होती हैं, असली मारकाट वाली नहीं। क्योंकि हमेशा लड़ना हॉक की तरह भी खतरनाक है, उसमें चोट लग सकती है, और हमेशा भाग जाना डव की तरह भी फायदेमंद नहीं, आप संसाधन खो देंगे। इसलिए अक्सर एक मिलीजुली रणनीति या कहें एक संतुलन स्थिर हो जाता है।
ठीक है, तो टकराव की भी अपनी एक स्थिरता होती है, लेकिन फिर उस परोपकार का क्या जो हम रिश्तेदारों के प्रति दिखाते हैं, अपने भाई बहन बच्चों के लिए? अध्याय 6 जीन कला शायद इसी की व्याख्या करता है।
हाँ, और ये किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। इसे कहते हैं किन सिलेक्शन, रिश्तेदारी का चयन, और ये आइडिया मूल रूप से W.D. हैमिल्टन ने दिया था। तर्क बहुत सीधा सा है, आप अपने भाई बहन या बच्चों से अपने 50% जीन साझा करते हैं, है ना? अपने पोते पोतियों या भतीजे भतीजियों से 25%, तो उनकी मदद करना आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो अपनी ही प्रतियों की मदद करने जैसा है।
मतलब अगर मैं अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हूँ तो जीन के नजरिए से ये ठीक हो सकता है।
हाँ, ये जीन के नजरिए से एक फायदे का सौदा हो सकता है, खासकर अगर आपके भाई के आगे बच्चे पैदा करने की संभावना आपसे ज्यादा हो, क्योंकि जीन तो बस अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आपके शरीर में हो या आपके रिश्तेदार के।
लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े हैं जैसे चींटियां या मधुमक्खियां, उनमें तो हमने सुना है कि श्रमिक अपना पूरा जीवन रानी की सेवा में लगा देते हैं, खुद बच्चे पैदा ही नहीं करते, ये कैसे समझाया जा सकता है?
हाँ, वो किन सिलेक्शन का एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं चरम उदाहरण है, और उसका कारण उनकी एक खास तरह की आनुवंशिक प्रणाली है जिसे हैप्लोडिप्लॉयडी कहते हैं।
हैप्लोडिप्लॉयडी, ये क्या होता है?
इसमें होता यह है कि नर जो होते हैं ड्रोन, वो सिर्फ माँ से जीन प्राप्त करते हैं, बिना निषेचन के अंडे से बनते हैं, पिता होता ही नहीं, जबकि मादाएं रानी और श्रमिक सामान्य रूप से माँ और पिता दोनों से जीन लेती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि श्रमिक बहनें आपस में औसतम 75% जीन साझा करती हैं।
75%? माँ और बेटी से भी ज्यादा? माँ बेटी में तो 50% होता है।
हाँ बिल्कुल, माँ और बेटी में 50% ही होता है। तो आप सोचिए, एक श्रमिक मधुमक्खी के जीन के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, अपनी रानी माँ की मदद करना ताकि वो और बहनें पैदा कर सके जिनसे वो 75% मिलती जुलती है, या खुद के बच्चे पैदा करना जिनसे वो सिर्फ 50% ही मिलती जुलती?
जाहिर है, बहनों की मदद करना।
बिल्कुल, तो उनका वो जो आत्मबलिदान हमें दिखता है वो असल में जीन का एक ठंडा गणितीय स्वार्थ है, हिसाब किताब का मामला है।
वाह, ये गणित तो वाकई रिश्तों की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देता है।
अच्छा, किताब में परिवार नियोजन पर भी बात है, मतलब जानवर कितने बच्चे पैदा करें इस पर। हाँ, अध्याय 7 फिर से उस पुराने विचार को चुनौती देता है कि जानवर अपनी प्रजाति के भले के लिए कम बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज्यादा भीड़ ना हो जाए। डॉकिंस कहते हैं नहीं, ये प्रजाति के भले के लिए नहीं है, माता पिता उतने ही बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं जितने को वो सफलतापूर्वक पाल पोसकर बड़ा कर सकें और जो खुद आगे प्रजनन कर पाएं।
अच्छा, मतलब उनके अपने संसाधनों के हिसाब से।
हाँ, उनके संसाधन जैसे भोजन है, ऊर्जा है, समय है, वो सीमित है। अगर जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो हो सकता है कि कोई भी ठीक से ना पले और सारे संसाधन बर्बाद हो जाएं। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, प्रजाति का भला नहीं।
और परिवार के अंदर भी स्वार्थ का टकराव हो सकता है। अध्याय 8 और 9 में पीढ़ियों का संघर्ष और लिंगों का संघर्ष की बात है।
बिल्कुल, ये रॉबर्ट ट्राइवस के विचारों पर आधारित हैं। डॉकिंस बताते हैं कि माता पिता और बच्चों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। माता पिता चाहते हैं कि संसाधन सभी बच्चों में इस तरह बटें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफल हों। लेकिन हर बच्चा क्या चाहता है?
वो अपने लिए ज्यादा चाहेगा।
हाँ, हर बच्चा अपने लिए ज्यादा संसाधन चाहता है, भले ही उसके भाई बहन को कम मिले। क्यों? क्योंकि वो खुद से तो 100% संबंधित है, लेकिन भाई बहन से सिर्फ 50%। तो यहाँ हितों का टकराव है।
और नर और मादा के बीच भी ऐसा ही टकराव होता है।
हाँ, लिंगों के बीच भी हितों का टकराव होता है, खासकर जब बात प्रजनन की आती है।
ये टकराव क्यों होता है?
इसकी जड़ उनके शुरुआती निवेश के अंतर में है। देखिए, मादा का जो अंडाणु होता है वो बड़ा होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसे बनाने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, मतलब उच्च निवेश।
ठीक है।
जबकि नर का शुक्राणु छोटा होता है, गतिशील होता है और उसे बनाने में कम ऊर्जा लगती है, मतलब कम निवेश। तो इसका नतीजा क्या होता है? मादा के लिए हर संतान बहुत कीमती होती है क्योंकि उसका निवेश ज्यादा है, इसलिए वो साथी चुनने में ज्यादा चयनात्मक होती है, सोच समझ कर चुनती है।
और नर?
नर क्योंकि उसका शुरुआती निवेश कम है, तो उसके लिए एक रणनीति ये हो सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ संबंध बनाकर अपने जीन फैलाने की कोशिश करें। इसी टकराव से फिर वो प्रेमालाप के जटिल व्यवहार, बेवफाई के मुद्दे और बच्चों की देखभाल में कौन कितना योगदान देगा, ये सारी चीजें तय होती हैं।
ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ रिश्तेदारों की ही मदद तो नहीं करते। हम दोस्तों की, पड़ोसियों की, कभी कभी तो अनजान लोगों की भी मदद कर देते हैं। इनके बीच सहयोग कैसे विकसित हुआ? अध्याय 10 शायद इसी बारे में है।
हाँ, इसे कहते हैं पारस्परिक परोपकारिता, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म, जिसका सरल सा मतलब है आज तो मेरी मदद करो, कल मैं तुम्हारी। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। ये गैर रिश्तेदारों के बीच सहयोग की बुनियाद है।
yes.
लेकिन ये तभी काम करता है जब कुछ शर्तें पूरी हों।
क्या शर्तें?
पहली, आप दूसरों को पहचान सकें। दूसरी, आप याद रख सकें कि किसने आपकी मदद की थी। और तीसरी, सबसे जरूरी, आप उन धोखेबाजों को पहचान कर सजा दे सकें जो मदद लेते तो हैं पर बदले में देते नहीं।
अच्छा,
खून चूसने वाले वैम्पायर चमगादड़ इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जो चमगादड़ शिकार नहीं कर पाता उसे उसके साथी अपना खून पिलाते हैं, लेकिन वो उन्हीं की मदद करते हैं जिन्होंने पहले उनकी मदद की हो। धोखेबाजों को वो याद रखते हैं और अगली बार मदद नहीं करते।
हमारे समाज में भी तो ऐसा ही होता है। इज्जत, भरोसा, वादा निभाना, ये सब शायद इसी पारस्परिकता को बनाए रखने के तरीके हैं ना?
बिल्कुल, ये सब शायद इसी लेनदेन वाले सहयोग को मैनेज करने के लिए विकसित हुए मनोवैज्ञानिक तंत्र हैं। ये डॉकिंस का एक बहुत ही मौलिक और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। जैसे जीन जैविक जानकारी की इकाई है जो नकल के जरिए फैलती है, वैसे ही मीम सांस्कृतिक जानकारी की इकाई है।
सांस्कृतिक जानकारी जैसे?
जैसे कोई धुन, कोई विचार, कोई फैशन, कोई तकिया कलाम, खाना बनाने का कोई तरीका, भगवान का विचार, ये सब मीम है। ये नकल के जरिए बोलकर, लिखकर, देखकर, सिखाकर एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलते हैं।
और इनमें भी विकास होता है जीन की तरह?
हाँ, जैसे जीन में बदलाव आता है म्यूटेशन, वैसे ही मीम भी बदलते हैं। कोई कहानी सुनाते हुए थोड़ा बदल देता है, कोई फैशन थोड़ा बदल जाता है, और उनमें भी एक तरह का चयन होता है, एक तरह का विकास होता है। जो मीम ज्यादा आकर्षक होते हैं, आसानी से याद रह जाते हैं या ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं और ज्यादा फैलते हैं।
अच्छा, तो जैसे आजकल इंटरनेट पर कोई वीडियो या कोई हैशटैग एकदम से वायरल हो जाता है, वो मीम्स का ही खेल है।
बिल्कुल, इंटरनेट तो मीम्स के फैलने का एक जबरदस्त, बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया है। कौन सा मीम चलेगा, कौन सा नहीं, ये उसकी अपनी फिटनेस पर निर्भर करता है। वो कितना ध्यान खींचता है, कितनी भावनाएं जगाता है, कितनी आसानी से शेयर होता है, ये सांस्कृतिक विकास है जो जैविक विकास के साथ साथ उसके समानांतर चल रहा है।
किताब के बाद के संस्करणों में कुछ और अध्याय भी जोड़े गए थे ना?
हाँ, 2 अध्याय और जोड़े गए। अध्याय 12, जिसका शीर्षक है अच्छे लोग पहले स्थान पर आते हैं, वो ये दिखाता है कि कैसे टिट फॉर टैट जैसी रणनीतियां सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।
टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा।
हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत सहयोग से होती है। पहली बार मिलो तो सहयोग करो, फिर सामने वाला जो करे वही करो, अगर वो सहयोग करे तो तुम भी करो, अगर वो धोखा दे तो अगली बार तुम भी धोखा दो। ये रणनीति काफी सफल पाई गई। और अध्याय 13 है जीन की लंबी पहुंच। ये डॉकिंस की अगली किताब द एक्सटेंडेड फीनोटाइप का सार है। इसका मतलब है कि जीन का असर सिर्फ उसके अपने शरीर पर नहीं होता, बल्कि बाहर पर्यावरण पर भी हो सकता है। जैसे उदबिलाव जो बांध बनाता है या मकड़ी जो जारा बुनती है, वो भी उसके जीन का ही बाहरी प्रभाव है, उसका विस्तारित लक्षण है।
अच्छा, ये भी एक अलग ही नजरिया है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ अहम संदेश निकालने हों, तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि विकास को देखने का नजरिया बदलना होगा। मुख्य खिलाड़ी जीन है, हम नहीं। सबको जीन की नकल बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। और दूसरा कि हम सब उत्तरजीविता मशीनें हैं। ये हमें अपनी जगह समझने में मदद करता है, शायद थोड़ा विनम्र भी बनाता है। लेकिन ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि स्वार्थी शब्द यहाँ सिर्फ एक रूपक है, कोई नैतिक फैसला नहीं। जीन सोचते नहीं, वो बस अपनी नकल बनाते हैं। इसके नतीजे हमें कभी स्वार्थी लग सकते हैं, कभी परोपकारी।
हाँ, ये जरूरी बात है। तीसरा, ये किताब परोपकारिता का एक तार्किक आधार देती है। रिश्तेदारों के लिए किन सिलेक्शन और गैर रिश्तेदारों के लिए पारस्परिकता। इससे ये समझ आता है कि सहयोग और स्वार्थ दोनों ही विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे हम अपने आप भारत में देखते हैं कि परिवार के लिए तो गहरा लगाव होता ही है, किन सिलेक्शन, साथ ही पड़ोसियों या अपने समुदाय में मदद का लेन देन, पारस्परिकता भी खूब चलता है।
सही कहा। चौथा, गेम थियोरी और ESS हमें सामाजिक व्यवहार के पीछे की तर्क संगतता दिखाते हैं, क्यों कुछ नियम और रणनीतियां समाज में स्थिर हो जाती हैं। और पांचवा, मीम्स का विचार। ये संस्कृति को समझने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। कैसे विचार, फैशन या मान्यताएं फैलती हैं और बदलती हैं। जैसे हमारे देश में देखिए, कोई धार्मिक विचार हो या कोई राजनीतिक नारा कैसे तेजी से लोकप्रिय हो जाता है, ये मीम्स का ही खेल है।
और छठा, ये याद रखना कि संघर्ष भी जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है, चाहे वो लिंगों के बीच हो, माता पिता और बच्चों के बीच, या फिर अलग अलग समूहों के बीच, क्योंकि सबके आनुवांशिक हित पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते।
बिल्कुल। इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो वाकई दिमाग पर छप जाती हैं।
हाँ, जैसे वो सबसे मशहूर वाली, मुझे याद है, हम उत्तरजीविता मशीन है, रोबोट वाहन जिन्हें स्वार्थी अणुओं, जिन्हें जीन कहा जाता है, को संरक्षित करने के लिए आंख बंद करके प्रोग्राम किया गया है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये जीन केंद्रित दृष्टिकोण का सार है।
हाँ, है तो। लेकिन फिर डॉकिंस एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं जो उम्मीद जगाती है। वो कहते हैं, आइए हम उदारता और परोपकारिता सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हम स्वार्थी पैदा हुए हैं। आइए समझें कि हमारे स्वार्थी जीन क्या कर रहे हैं, क्योंकि तब शायद हमारे पास उनके मंसूबों को विफल करने का मौका हो सकता है।
ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि हम अपनी जैविक प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं, हम उसे समझ कर उससे ऊपर उठ सकते हैं।
बिल्कुल, डॉकिंस का यही संदेश है। हमारी चेतना, हमारी सीखने की क्षमता, हमारी संस्कृति जो मीम्स से बनती है, ये सब हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने जीनों के हुक्म को चुनौती दें। हम जानबूझकर सहयोग को चुन सकते हैं, दया को चुन सकते हैं, तर्क को चुन सकते हैं। हम सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्तियों के हिसाब से चलने को मजबूर नहीं है।
और वो मीम्स वाली परिभाषा भी बहुत स्पष्ट है। मीम्स के उदाहरण धुन, विचार, तकिया कलाम, कपड़ों के फैशन है। जैसे जीन शरीर से शरीर में कूदकर अपना प्रसार करते हैं, वैसे ही मीम्स नकल नामक प्रक्रिया के माध्यम से मस्तिष्क में कूदकर अपना प्रसार करते हैं। ये संस्कृति को एक तरह की जैविक प्रक्रिया की तरह देखने का नजरिया देता है।
बिल्कुल। तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं?
मुझे लगता है बहुत मतलब है। एक तो ये हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करता है। क्यों हम बच्चों से इतना ज्यादा जुड़ा महसूस करते हैं, या भाई बहनों में क्यों कभी कभी जलन या होड़ की भावना आ जाती है, ये सब किनशिप सिलेक्शन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखा जा सकता है।
और हमारे सामाजिक व्यवहार पर भी ये रोशनी डालता है। दोस्ती, नैतिकता, न्याय की भावना, धोखे पर गुस्सा क्यों आता है, ये सब शायद पारस्परिकता को बनाए रखने के लिए विकसित हुए मनोवैज्ञानिक तंत्र हैं। हमारे समाज में इज्जत या भरोसा इतना कीमती क्यों माना जाता है, शायद इसीलिए कि इसी से सहयोग का लेन देन चलता है। अगर भरोसा नहीं होगा तो सहयोग कैसे होगा?
बिल्कुल। और मीम का सिद्धांत तो आज की दुनिया को, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों कुछ खबरें, विचार या ट्रेंड्स एकदम से वायरल हो जाते हैं, जबकि दूसरे नहीं? ये मीम्स की अपनी फिटनेस का खेल है। ये हमें मीडिया को, विज्ञापनों को, यहाँ तक कि राजनीति को भी एक नए तरीके से देखने में मदद करता है।
और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी कुछ सहज प्रवृत्तियाँ कहाँ से आई हैं, जैसे अपने समूहों का पक्ष लेना या अजनबियों पर शक करना, और ये समझकर हम सचेत रूप से उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं। हम तर्क और सहानुभूति का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले ले सकते हैं, ज्यादा समावेशी समाज बना सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर आपसे पूछूं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि परोपकारिता और सहयोग जैसी अच्छी चीजें भी विकास की ठंडी तर्कसंगत प्रक्रिया से उभर सकती हैं। ये प्रकृति को सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष, रेड एंड टूथ एंड क्लॉ के रूप में देखने से बचाता है। और दूसरा, डॉकिंस का ये विश्वास कि हम इंसान अपनी जैविक विरासत को समझकर उससे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी चेतना हमें ये अनोखी क्षमता देती है।
हाँ, मेरे लिए भी शायद यही बात सबसे अहम है, वो विनम्रता जो ये जानने से आती है कि हम इस विशाल जैविक नाटक में जीन के वाहन मात्र हैं। यह हमारे अहंकार को थोड़ा कम करती है, और साथ ही यह उम्मीद कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और शायद बदल भी सकते हैं, ये वाकई उम्मीद जगाता है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना? हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में जो विचार और मान्यताएं फैली हुई हैं, उनमें से कितनी हमने वाकई सोच समझ कर चुनी है और कितनी बस सफल मीम है जो अपनी नकल बनाने में कामयाब हो गई और हम उन्हें बिना सोचे समझे ढो रहे हैं।
ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। शायद हमारी अगली चर्चा इसी पर हो सकती है कि हम मीम्स को कैसे पहचाने और कैसे चुनें।
जरूर मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।